बहुत ज्यादा भोजन कर लिया तो अब वो उठने की स्थिति में नहीं रह गए। यजमान घबरा रहा था कहीं यहीं वीर गति को प्राप्त न हो जाए, इसलिए उसने उनको खटिया पर बिठाया और ले चले। खटिया पर बिठा के ले चले, लिटा करके बिठाए, बैठने की कहां सामर्थ्य। खटिया पर लिटा करके उनके घर की ओर ले जा रहे थे, हालत और ज्यादा बिगड़ गई। बोले कहीं रास्ते में ही ना पधार जाए, तो ऐसा करो वैद्य जी के यहां ले चलो। वैद्य जी के द्वार पर खटिया उतार दी और वैद्य जी ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अभी चूरन चटनी देते हैं, तुरंत हाजमा हो जाएगा, दो चार डकार आएगी और सब ठीक हो जाएगा। तुरंत उन्होंने बढ़िया कोई चूर्ण दिया, कहा बस एक फंकी ले लो, एक घूट पानी पी लो, बढ़िया हो जाएगी तबीयत। इतना सुनते ही चौबे जी ने डांट करके कहा, मूर्खाधिराज वैद्यराज, इतना चूर्ण खाकर पानी पीने की जगह होती तो दो चार गुलाब जामुन और खा लेते, इतनी जगह कहां कि चूर्ण खा सके और घूट पानी पी सके। तो हम समझते हैं जैसे उनकी हालत हो गई, उससे भी भयंकर हालत दुर्वासा जी के अपने शिष्यों के सहित हो गई। दुर्वासा जी को याद है अम्बरीश जी वाला प्रकरण, बोले वहां तो एक भगत था, तब इतनी हालत खराब हुई कि तीनों लोगों में भागना पड़ा, और यहाँ तो पांच पांच पांडव हैं, द्रौपदी, सबके सब भक्त ही भक्त हैं, लगता है कोई भगवान की विचित्र लीला है। शिष्यों से कहा कि हम तो कुछ भी कर लेंगे, भाग दौड़ कर लेंगे, तुम लोग भाग जाओ जान बचा के। दुर्वासा जी के 10,000 शिष्य दसों दिशाओं में भाग गए, और इधर भगवान ने भीमसेन अर्जुन को कहा जाओ जाओ निमंत्रण देके आओ, हाँ निमंत्रण देके आओ, और ये कहना महाराज एक दो की रसोई खराब हो कोई बात नहीं, इतनी लोगों की रसोई बन के तैयार। बोले महाराज झूठ कैसे बोले, झूठ उठ की चिंता मत करो, वो आएंगे ही नहीं खाने के लिए, तुम कह देना, बचने का दरिद्रता, कहने में क्यों चूकना, कह देना कि महाराज चलो भोजन करो। वो कहेंगे कि हम भोजन करते तो तुम्हें आशीर्वाद देते, हम तो बिना भोजन के ही तृप्त हैं, क्या आशीर्वाद चाहते हो, मांग लो। तो भगवान ने सिखा पढ़ा के भेजा था आशीर्वाद मांग लेना, कि जो हमसे अकारण शत्रुता करते हैं, हमारा बुरा सोचते हैं, उन हमारे शत्रुओं का समूल विनाश हो जाए, ऐसा बोल देना। भेजा इसलिए था कि दुर्वासा जी उनको समूल नष्ट होने का शाप दे दें, उल्टा हो गया। हमारे यहाँ महाभारत में तो नहीं है, हमारे यहाँ महात्मा लोग विनोद में एक बात और कहते हैं कि भीमसेन के ऊपर ज्यादा प्रसन्न थे। भीमसेन बोले नहीं नहीं महाराज, थोड़ा तो पाना पड़ेगा। बोले नहीं, तुम एक वरदान और मांग लो, कोई जो चाहो सो मांग लो। भीमसेन बोले महाराज क्या करें, हमारा भोजन बहुत है, खुराक हमारी बहुत है, और बहुत ज्यादा पाते हैं तो फिर दिशा मैदान के लिए बहुत देर तक बैठना पड़ता है शौच त्याग के लिए, तो ऐसा करो आप ऐसा वरदान दे दीजिए कि भोजन तो हम करें और शौच जाने की सेवा हमारे मामा शकुनी जी कर लिया करें। साधुओं में कहावत है खाएं भीम हगे शकुनी। हमारे सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी कहते थे कि जब भीमसेन की इच्छा होती कि शकुनी को थोड़ा मजा चखामे मामा जी को, तो 10-20 शेर मिर्चा घोर के पी जाते, फिर मिर्चा खाए हुए की क्या दशा होती, कभी खाली हो तो पता चले। भगवान का भक्त जहां प्रकट हो वहां उसे पहचान कर आदर कर लो, मूल बात है। भक्त का किसी भी अवस्था में तिरस्कार ना हो, और भक्त का किसी भी अवस्था में तिरस्कार ना हो, इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है। जिनमें भगवान की भक्ति के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें प्रकट भक्त मान लो, और जिनमें भक्ति के कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सामान्य प्राणियों के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, उन प्राणियों को भी भगवान का अंतर्निष्ठ भक्त मान लो। बोले ये भीतर से भगत हैं, बाहर से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अपने को छोड़कर बाकी सबको भगवान का मान लो, भगवान का भक्त मान लो, तब किसी भी जीव का तिरस्कार नहीं होगा। और फिर नहीं तो ऐसा भी हो सकता है जिसे हम भक्त नहीं मान रहे हैं, भक्ति का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है और वो भीतर से भगवान का महान भक्त है, तो तिरस्कार हो जाएगा। इसलिए किसी भी प्राणी का तिरस्कार ना हो, सब भगवान के भक्त हैं, इस भाव को अंगीकार करो। भक्तमाल ग्रंथ इतना अद्भुत ग्रंथ है, भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय कोई ले ले तो फिर बहुत लाभ मिलता है साधक को, बहुत लाभ मिलता है। हाँ, ये बात जरूर है, भक्तमाल की अनेक कथाएं ऐसी हैं जो अति भक्ति के चरित्र हैं, जन सामान्य उनके अधिकारी नहीं है, ऐसी बात भी है, लेकिन जब वह निष्ठापूर्वक उनको पढ़ेगा और उनके तात्पर्यों को समझने का प्रयत्न करेगा तो कोई भक्ति ऐसी नहीं। ऐसे चरित्र तो पुराणों में भी है, अति भक्ति के चरित्र पुराणों में नहीं है क्या? पुराणों में भी अति भक्ति के चरित्र हैं, अनेक चरित्र हैं पुराणों में इस प्रकार के, बहुत ऊंची तक सीमा तक भक्ति चली गई। अब आरा चला देना, ये अति भक्ति है कि नहीं? मूरत ध्वज के प्रसंग में पुराणों में भी कम चरित्र नहीं है, पौराणिक भक्तों में भी ऐसे अनेक चरित्र हैं। बड़ा हित हो जाएगा उस दिन जब गीता प्रेस से ये ग्रंथ प्रकाशित होगा, भले ही संक्षेप में ही प्रकाशित हो, तो साधक जगत को बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा लाभ होगा, और भगवत कृपा से ऐसा हो जाएगा। तो भक्तमाल ग्रंथ के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज हैं, राधा रमणीय वैष्णव हैं, इन्हीं को श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल की टीका लिखने की आज्ञा दी है, और श्री प्रियादास जी महाराज भी, उनकी टीका भी बिल्कुल इतनी अद्भुत टीका है, भक्ति रसबोधनी टीका अपने आप में अद्भुत टीका है। उस टीका में प्रियादास जी महाराज ने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के कतिपय चरित्रों को लिखा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र का आरंभ प्रियादास जी ने कहां से किया है उसका हम स्मरण करते हैं। तिया सो स्नेह बिन पूछे तिया गे पिता गे गई, भूले सुधी देह भजे वाही ठोर आए हैं, बधु अति लाज भई ऋषि सो निकस गई, प्रीति राम नई तन हाड़ चाम छाए हैं, सुनो जब बात मानो हुए गयो प्रभात, वह पाछे पछिताज कजी काशीपुरी आए हैं, कियो तहां बास प्रभु सेवा ले प्रकाश चीनो, लीनो दृढ़ भाव नैन रूप के तिसाए हैं। ये चरित्र हम कर चुके, कह चुके हैं। आपकी पत्नी बिना पूछे आपके ससुराल चली गई और रत्नावली की जिहवा पर बैठ करके ठाकुर जी ने उपदेश दिलवाया, तुलसीदास जी के जीवन में नव प्रभात हो गया और वे सब कुछ त्याग करके वहां से चल करके पुनः श्री अयोध्या आए और सारे भारतवर्ष के दिव्य तीर्थों का विचरण करते हुए वे लौट करके पुनः काशी आए, और काशी में एक अंतिम पंक्ति में प्रियादासी लिख रहे हैं, लीनो दृढ़ भाव नैन रूप के तिसाए। काशी में भजन करते करते वह अवस्था हो गई जो भगवत दर्शन की अत्यंत व्याकुलता आपके चित्त में बढ़ी, इतनी अधिक व्याकुलता बढ़ी कि उस व्याकुलता में आपको अपना प्राण धारण करना भी कठिन हो गया। और उसी काल की बात है, शौच जल शेष पाय भूतु विशेष को, बोल्यो मुख सुख मान हनुमान जु बताए हैं, रामायण कथा सो रसायन है कानन को, आवत प्रथम पाछे जात घृणा छाए, जाए पहचान संग चले उर आने आए, बन मध जाने धाय पाए लपटाए, करें तिरस्कार कही सकोगे नटारी, मैं तो जाने रस सार रूप धर्यो जैसे गाए। गोस्वामी जी के शौच से अवशिष्ट जल के सिंचन से वह जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कल, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, वो तृप्त हो गया और उसने हनुमान जी का पता बताया और जहां आजकल संकट मोचन हनुमान जी विराजमान हैं, उसी ठीक स्थल पर गोस्वामी जी को हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ। और वहां जब दर्शन प्राप्त हुआ तो श्री हनुमान जी महाराज ने आज्ञा दिया, हनुमान जी महाराज ने आज्ञा दिया कि हे गोस्वामी जी महाराज, आप चित्रकूट चले जाओ, चित्रकूट में ही आपको दर्शन होगा। गोस्वामी जी से कहा, हनुमान जी ने वरदान मांग लो। गोस्वामी जी ने क्या वरदान मांगा? देखो, हमने बात चतुर शब्द से शुरू की थी। गोस्वामी जी बहुत चतुर हैं, संसार की चतुराई बाधक है, संसार की चतुराई बाधक है, लेकिन परमार्थ पथ की जो चतुरता है वो बाधक नहीं है, वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। गोस्वामी जी परमार्थ पथ में कितने चतुर हैं। हनुमान जी ने कहा वरदान मांग लो, तो गोस्वामी जी ने क्या वरदान मांगा? मांग लीजे बर कही दीजे राम भूप रूप,
मांग लीजे बर कही दीजे राम भूप रूप,
अति ही अनूप नीत नैन अभिलाखिए,
अति ही अनूप नीत नैन अभिलाखिए।
देखो, ये है गोस्वामी जी की कुशलता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मन में विचार किया गोस्वामी जी महाराज ने कि हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रसन्न होकर वरदान मांग लो, अब मैं कहूं कि राम जी के दर्शन करा दो तो राम जी का दर्शन तो हो जाएगा, पर अकेले अकेले राम जी के दर्शन से आनंद नहीं होगा, साथ में किशोरी जी का भी दर्शन हो, और राम जी किशोरी जी का दर्शन हो तो क्या लखनलाल जी का दर्शन न हो, उनका भी दर्शन होना चाहिए, जीवों के आचार्य हैं। वो लखनलाल जी का दर्शन हो तो फिर क्या श्री राम रूप, श्री राम प्रेम स्वरूप भरत जी का दर्शन न हो, और फिर क्या शत्रुघ्न कुमार का दर्शन न हो? नहीं, चारों लाल जी का दर्शन होना चाहिए, माता जी का, फिर हनुमान जी का भी दर्शन होना चाहिए, फिर वशिष्ठ जी का भी दर्शन होना चाहिए। महाराज तो ऐसा कोई वरदान मांग लें कि पूरे परिकर के सहित राम जी का दर्शन हो जाए। भक्त परिकर के सहित जो भगवान का दर्शन है वो परिपूर्ण दर्शन है। गोस्वामी जी ने कहा अलग अलग वरदान मांगेंगे कि उसका दर्शन हो जाए, उसका दर्शन हो जाए, उसका दर्शन हो जाए, तो हनुमान जी कहेंगे कोई एक मांग लो, पूरी दुकान क्यों खोल रहे हैं। तो ऐसी ऐसा बढ़िया वरदान मांगू कि एक में ही सब आ जाए। तो गोस्वामी जी ने क्या वरदान मांगा?
मांग लीजे बर कही दीजे राम भूप रूप,
मांग लीजे बर कही दीजे राम भूप रूप।
राम जी का भूप रूप राज्याभिषेक के समय की जो झांकी है, उसमें विभीषण जी भी होंगे, सुग्रीव जी भी होंगे, हनुमान जी भी होंगे, जामवंत जी, अंगद जी भी होंगे, ब्रह्मा जी भी होंगे, शंकर जी भी होंगे, गणेश जी भी होंगे, राज्याभिषेक में तो सब होंगे। राम जी का जो राजाधिराज स्वरूप है उसका दर्शन हो, माने परिकर के सहित दर्शन हो। हनुमान जी मूड हिलाने लगे, बोले बुद्धिमताम वरिष्ठम तो हम हैं, पर हनुमान जी तुम भी हमसे किसी प्रकार से कम नहीं हो। बहुत सुंदर वरदान मांगा है, बहुत सुंदर वरदान मांगा है। हनुमान जी प्रसन्न हो गए गोस्वामी जी की कुशलता पर, बोले चित्रकूट पधारो। हमारे महाराज जी कहते थे कि पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज गोस्वामी जी की चतुराई पर एक दृष्टांत देते थे, वृंदावन वाले ताड़वाली कुंज वाले पंडित जी महाराज। बोले एक बुढ़िया थी, बहुत निर्धन थी, बुढ़ापे में आंख और चली गई, अंधी हो गई बेचारी। और उसके एक ही लड़का था, उसका विवाह भी नहीं हुआ था, और उसकी एक प्रबल इच्छा थी कि मेरी पुत्र का विवाह हो जाए और एक पोता हो जाए और मैं उसको खिलाऊं और आंख भर के देखूं, ये सब इच्छा उसकी थी। अब बड़े बड़े मनोरथ थे उसमें, किसी महात्मा ने बता दिया कि आशुतोष भगवान शिव हैं, इनकी उपासना करो। अब तो बुढ़िया शंकर जी के पीछे ही पड़ गई, दिन रात भजन करे, शंकर जी को जल चढ़ावे, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोले मैया वृद्धा माता, तेरे भजन से तेरी उपासना से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। अब बुढ़िया घबराई, मैं तो इतना इतना चाहती हूं, और ये कहेंगे कि कोई एक वरदान मांगो, एक ही देंगे, दस पांच तो देंगे। उसने कहा महाराज आप कृपा करो, मैं अपने गुरु महाराज से पूछिया हूं जिन्होंने हमको आपकी उपासना बताई थी। हाँ पूछिया पूछिया हो गई। बोले पंडित जी आपने बताई भगवान की कृपा, तो भाई मैं क्या वरदान मांगू। बोले तू चाहती क्या है। बोले मैं ये चाहती हूँ मेरे लड़के का ब्याह हो जाए और पोता भी हो जाए और उसको मैं खूब आंख भर के देखूं, उसको खिलाऊं, ये सब मैं चाहती हूँ। तो महाराज गुरु महाराज ने युक्ति बता दी और वहां से युक्ति समझ करके ये बुढ़िया आई। और बुढ़िया आकर के शंकर जी से बोली, बोले महाराज आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए, मैं अपने पोते को सोने के कटोरा में दूध भात खाते हुए आंख भर के देखूं। क्या वरदान मांगा, मैं अपने पोते को सोने के कटोरा में दूध भात खाते हुए आंख भर के देखूं। अब देखो सब बात आ गई कि नहीं, पोता तभी होगा जब ब्याह होगा, लड़के का ब्याह हो गया, और गरीब आदमी के घर में सोने का कटोरा कहां से आएगा, सोने का कटोरा होगा, दूध भात खाने को मिलेगा, और फिर आंख भर के देखूं। भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए, बोले बारी मैया तेरे गुरु भी बड़े चतुर हैं, बढ़िया युक्ति बताई, कोई बात नहीं सब है जाए। और एक जड़मती था, है तो बेचारा ब्राह्मण, पर घर में सुमति नहीं थी, ब्राह्मण बहुत गरीब था। एक बार उसकी गरीबी पर तरस खा करके नारद जी ने दर्शन दे दिया, और नारद जी ने दर्शन दे करके जो है वरदान मांगा, कहा कि तुम वरदान मांग लो। ब्राह्मणी से कहा कि तुम जो चाहो सो वरदान मांग लो। वो ब्राह्मणी बोली कि मैं अत्यंत रूपवती हो जाऊं। ब्राह्मणी क्या बोली, मैं अत्यंत रूपवती हो जाऊं। नारद जी ने कहा एव मस्त, माथा ठोका, राम 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 क्या मांग लिया इसने। नारद जी चले गए, ब्राह्मणी रूपवती हो गई। उसके घर से राजा समीप से राजा की सवारी निकली, और राजा दुष्ट प्रकृति था, इतनी रूपवती स्त्री को देखकर हठपूर्वक वो खींच करके पकड़वा कर सिपाहियों से महल में ले गया। अब बेचारा ब्राह्मण का रहा सा घर और उजड़ गया, बड़ा दुखी था ब्राह्मण। फिर नारद जी आए, देखा बहुत दुखी है, फिर कृपा करें। तो नारद जी ने कहा ब्राह्मण देवता वरदान मांगो। उसने कहा महाराज मेरी पत्नी सूकर मुखी हो जाए, सूअर के जैसा उसका मुंह हो जाए, उसका रूप नष्ट हो जाए। नारद जी कहे भगवान इसने भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, राग द्वेष नहीं पड़ा हुआ, वो सूकर मुखी हो गई, राजा ने महल से निकाल दिया। अब नारद जी फिर आए, देखे बड़ी विपत्ति है इनके ऊपर, कहा कहो वरदान मांगो। अब की बार पुत्र से कहा वरदान मांगो। बोले हमारी माताजी जैसी थी वैसी होकर घर आए। तो महाराज तीन तीन बार नारद जी ने अवसर दिया, पर ये ऐसे जड़मती थे कि तीन बार भी नारद जी की कृपा होने पर भगवान की भक्ति तो मांग ही नहीं पाए, उसी संसार में उलझ के रह गए, नारद जी की कृपा का लाभ नहीं ले सके। श्री गोस्वामी जी महाराज कृपा का पूर्ण लाभ लेने वाले हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज को आज्ञा दी और श्री गोस्वामी जी महाराज सब कुछ त्याग करके गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वहां से चल करके चित्रकूट पधारे। चित्रकूट के संबंध में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, चित्रकूटस्य श्रृंगाणि नरो यावान् निरीक्षति कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मतिः, लिखा है वाल्मीकि ने। कहते चित्रकूट के श्रृंगों का जो दर्शन करते हैं उनको उनका परम कल्याण हो जाता है, उनकी बुद्धि भी पाप की ओर जाती नहीं है। ऐसी चित्रकूट की महिमा है, अद्भुत महिमा चित्रकूट की है। चित्रकूट में 6 महीने रह करके हव्य पदार्थ का आहार करते हुए मौन रह करके युगल नाम जप से अनेक साधक लाभ प्राप्त करते हैं, विशेष भगवान की अनुभूति प्राप्त करते हैं। आज भी साधन करने वाले लोग जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा भी है, पय आहार पय अनहाय, पय शनि में स्नान करे, कामतानाथ जी की प्रदक्षिणा करे, फल खाए, राम नाम षट मास 6 महीने तक राम नाम का जप करे, तो निश्चित ही उसे भगवान की अनुभूति होगी। और चित्रकूट सब दिन बसत प्रभुसिय अनुज समेत, गोस्वामी जी कह रहे हैं चित्रकूट सब दिन बसत प्रभुश्री अनुज सिय अनुज समेत राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। बहुत बड़ी महिमा है चित्रकूट की। श्री चित्रकूट की ओर श्री गोस्वामी जी ने प्रस्थान किया, हम लोग भी गोस्वामी जी के साथ श्री चित्रकूट चले हैं। बोलो श्री चित्रकूट धाम की जय, श्री कामतानाथ भगवान
जय,
श्री मंदाकिनी गंगा की जय, श्री पयस्विनी गंगा की जय, श्री मदगंजन महादेव की जय, श्री हनुमान धारा की जय। अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, कोपित कलि लोपित मंगल मग,
कोपित कलि लोपित मंगल,
बिलसत बढ़त मोह माया मल,
बिलसत बढ़त मोह माया मल,
अब चित चेत चित्रकूट चलो,
अब चित चित्रकूट चलो,
भूमि बिलोक राम पद अंकित,
भूमि बिलोक राम पद अंकित,
वन बिलोक रघुबर बिहार थल,
वन बिलोक रघुबर बिहार थल,
शैल श्रृंग भव भंग हे तुलकी दलन कपट पाखंड दंभ दल, शैल श्रृंग भव भंग हे तुलकी दलन कपट पाखंड दंभ दल, अब चित चेत चित्रकूट चलो,
अब चित चेत चित्रकूट चलो,
अब चित चेत चित्रकूट चल,
अब चित चेत चित्रकूट चल,
जहाँ जन्मे जग जनक जगत पति
विधि हरिहर परिहर प्रपंच चल।
जन जन में जग जनक जगत पति विधि हरिहर परिहर प्रपंच चल।
सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम
सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम
विगत विषाद भय पारत नल।
विगत विषाद भय पारत नल
न करु विलंब विचारु चारु मति बरस पाछिले सम अगिलो पल।
न करु विलंब विचार चारु मति
बरस पाछिले सम अगिलो पल। मंत्र सो जाई जपहिं जे जपि भे अजर अमर हर अचय हलाहल।
मंत्र सो जाई
जपहिं जे जपि भे अजर अमर हर अचय हलाहल। राम नाम जप जाग करत नित मज्जत पय पावन पीवत जल।
राम नाम जप
जाग करत नित मज्जत पय पावन पीवत जल। करी है राम भाव तो मन को सुख साधन अनयास महाफल।
करी है राम भाव तो मन को सुख साधन अनयास महाफल।
कामद मणि कामता कलप तरु सो जुग जुग जागत जगती तल।
आमद मणि कामता कलप तरु सो जुग जुग जागत जगती तल।
तुलसी ताही विशेष बूझिए एक प्रतीति प्रीति एक केवल।
तुलसी ताही विशेष बूझिए एक प्रतीति प्रीति एक।
अवचित चेत चित्र पूतें चल।
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 बड़ा अद्भुत पद है। इसकी चर्चा करने का सौभाग्य चित्रकूट में ही प्राप्त हुआ था। दो तीन दिन में, तीन दिन में, चार दिन में इस पद की चर्चा चार दिन में की थी चित्रकूट में ही। अद्भुत पद है। अब क्या कहें, पद के गान से ही अपने मन को संतोष दिला देते हैं। अद्भुत पद है। अब चित्त चित्रकूट ही चल। प्रभु मिलन की उत्कंठा गोस्वामी जी के चित्त में बड़ी प्रबल हो गई। वे चित्रकूट पधारे हैं। अभी चित्रकूट पहुंच नहीं पाए हैं, चल पड़े हैं चित्रकूट की ओर काशी से। कभी कभी मन में उत्साह होता है, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। हनुमान जी महाराज ने आश्वासन दिया है, प्रभु दर्शन अवश्य देंगे। चल पड़ते हैं, वेग पूर्वक चल पड़ते हैं, व्याकुल हृदय से चल पड़ते हैं। फिर मन में आता कि नहीं नहीं, घोर कलिकाल है, हमारे जैसे अधमाधम प्राणी को प्रभु दर्शन देंगे। हाय हाय, देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके हमने अभी तक के जीवन को व्यर्थ में गंवा दिया। उनका चित्त दैन्य भाव से भर जाता और वे रुदन करने लग जाते, सोचते मैं भला दर्शन के लायक कहाँ हूं, रोने लग जाते। फिर मन में आता नहीं नहीं, प्रभु पतित पावन है, उनका नाम पतित पावन है, दर्शन अवश्य देंगे। फिर चल पड़ते। कभी मन में आता कि वे प्रभु जब सामने प्रकट होंगे तो फिर मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, फिर वो दौड़कर आएंगे और वे अपने भुजाओं में भरकर उठाकर हृदय से लगा लेंगे, अपने स्नेह पूर्वक कर कमल से हमारे शरीर में धूल मिट्टी लगी हो उसको झाड़ने लग जाएंगे और स्नेह पूर्वक कहेंगे, अब तुम क्यों रो रहे हो, अब तुम मेरे। ऐसे अनेक भाव, विविध भाव उनके चित्त में आते हैं। पहले भगवान क्या कहेंगे, फिर हम क्या कहेंगे, ऐसे भाव भी चित्त में आते हैं। इसी प्रकार से भाव सिंधु में डूबते उतराते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट पहुंचे और श्री राम घाट पर मदगंजन महादेव विराजमान हैं। सबसे पहले आपने मदगंजन जी का आश्रय लिया, उनका पूजन किया, वंदन किया और राम घाट पर ही वे विराजमान रहने लगे। नित्य प्रति श्री मंदाकिनी जी में राम घाट पर स्नान करते और श्री कामतानाथ जी की प्रदक्षिणा करते। सर्वथा अयाचित वृत्ति से जो कुछ प्राप्त होता उसी को भिक्षा के रूप में ग्रहण करते, कंद मूल फल खा करके भजन करते और अहर्निश युगल नाम का जप करते। इस प्रकार की स्थिति में रह करके वे चित्रकूट विराज रहे थे और दर्शन की व्याकुलता निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन की बात है, गोस्वामी जी महाराज श्री मंदाकिनी में स्नान करके राम घाट पर बैठे हुए, हाथ में तुलसी की माला है, युगल नाम का जप कर रहे हैं, नेत्रों से प्रेमाशु प्रवाह चल रहा है और उसी बीच में श्री राम और लक्ष्मण सुंदर अश्व पर विराजमान होकर के राजकुमार के वेश में। राम जी की आयु कितनी है देखो, राम जी की निश्चित आयु तो 16 से 1 साल कम है, 16 वर्षों में रामो राजी बलोचना, महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, मे रामा मेरे राम जी उनकी आयु कितनी है, बोले 16 वर्षा, 16 में 1 कम माने अब तक पूरे 16 साल के नहीं हुए हमारे राम जी, बस 14 पूरी कर चुके हैं, 15वीं में चल रहे हैं। बड़े लाड़ प्यार में पालन पोषण हुआ है, खूब लाड़ लड़ाया गया है, इसलिए 14 वर्ष में ही पूर्ण किशोर यौवन श्री अंग में दिखाई पड़ रहा है। कल हम लोग श्री रामलीला में श्री सीताराम जी के विवाह का चरित्र का दर्शन कर रहे थे। किशोरी जी राम जी के कंठ में माल्यार्पण कर रही थी, बड़ी अद्भुत झांकी थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जानकी जी की आयु धनुष यज्ञ के समय केवल 6 वर्ष की, कितनी है, और राम जी की आयु 15 वर्ष की, 15वीं वर्ष में राम जी चल रहे हैं, 6 वर्षीय जानकी। आप लोग 6 वर्ष की जानकी, अरे इतना लाड़ प्यार से पाली पोसी गई हैं कि वो 6 वर्ष की होने पर भी सदा द्वादश वर्षीयाम रत्न मंडप संस्थिताम, वो 6 वर्षीय होने पर भी इतना लाड़ लड़ाया गया है कि 6 वर्षीय होने पर भी सदा द्वादश वर्षीयाम, 6 वर्ष की होकर भी वो 12वीं वर्षीय लगती हैं और हमारे सरकार भी 15 वर्ष के ही हैं। किशोर अवस्था 16 वर्ष की अवस्था को किशोर कहते हैं और ये किशोर अवस्था चलती है 20 तक, इसके बाद 20 के बाद फिर युवावस्था मानी जाती है। पर हमारे राम जी भी इतने लाडले हैं कि इतना सुंदर इनको लाड़ प्यार से जिमाया गया है, माताओं ने इतना स्नेह दिया है कि 15 वर्ष में ही वे पूर्ण युवक के स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं, उनका यौवन निखरता हुआ दिखाई पड़ता है। हमारे ब्रज के कवियों ने कहा कि तेजु हे जु गए बिनु देखे, इस पद में परमानंद स्वामी जी कहते हैं कछुक उठत मुख रेखे, ठाकुर जी का भी। अब देखो हमारे ब्रज के ठाकुर जी वैसे देखा जाए लीला के क्रम में तो 10-11 साल के ठाकुर जी, पूरे 11 साल के नहीं है, दस वर्ष से ऊपर आयु है, ग्यारहवीं साल में लगे हैं ठाकुर जी, और किशोर अवस्था का दर्शन हो रहा है। खूब माखन मिश्री खाया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो श्री राम जी ने युगल किशोर राजकुमार के वेश में गौर श्याम राजकुमार के रूप में दर्शन दिया। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए हैं और तुलसीदास जी महाराज के सामने से ठाकुर जी निकल गए। एक बार तो उस रूप सौंदर्य को देख करके टकटकी लगा करके अपलक नेत्रों से उस रूप राजी को निहारते रह गए। पर ठाकुर जी घोड़े पर बैठ करके निकले हैं, तीव्र गति से ठाकुर जी निकले हैं। एक झलक आई तो सही, पर आते आते चित्त में ये आ गया कि कोई सुंदर राजकुमार हैं, मृगयार्थ शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहे हैं। ऐसा मानकर, अरे संसार में तमाम घटनाएं घटती रहती हैं, आप फिर नेत्र बंद करके सीताराम सीताराम करने लग गए। अब फिर व्याकुल हो गए। श्री हनुमान जी महाराज पधारे, बोले कहो तुलसीदास जी महाराज, श्री प्रभु का दर्शन हो गया? बोले नहीं महाराज, दर्शन तो नहीं हुआ। ले आज की ही बात है, आप बैठकर नाम जप कर रहे थे, घोड़े पर बैठकर लखनलाल जी के साथ प्रभु पधारे थे, राजवेश में, राजकुमार वेश में, आपने दर्शन नहीं किया? अरे हनुमान जी महाराज, हमने देखा तो जरूर, पर हमको लगा कि कोई राजकुमार हैं, शिकार खेलने जा रहे हैं, ऐसा विचार कर हमने नेत्र बंद कर लिए। हनुमान जी ने कहा, गोस्वामी जी अवसर चूक गए, वे प्रभु ही थे। अब तो इनकी व्याकुलता और अधिक बढ़ गई। और आपने उस समय एक पद गाया, बड़ा प्यारा पद है गोस्वामी,
रहे बैरी हो, रहे बैरी हो, लोचन रहे बैरी हो, लोचन रहे बैरी हो, लो चन रहे बेरी हो, लोचन रहे बेरी हो, लोचन रहे बेरी हो, जानी बूझी अकार जानी बूझी अकाल की हो, दियो भूग में गोई, दियो दियो भूग में गोई, लोचन रहे वे तेरी गति न जानो, रायो जगत में सोए, अभिगत जुतेरी गति न जानो, रायो जगत सो, सवे रूप की अवधि मेरे, सवे रूप की अवधि मेरे, निकसी गए ढिंग होए ना, निक कसी गए ढिग हो लोचन रहे
सवे रूप की अवधि मेरे निकस गए ढिंग होए एकदम सामने से निकल गए
कर्म ही नहीं पाए हीरा कर्म ही नहीं पाए हीरा तुलसीदास जू राम बिछुरे तुलसीदास जू राम बिछुरे कहो कैसी होए कहो कैसी रहे बैरी होए लोचन रहे बैरी
हो। गोस्वामी जी का विरह ताप इतना बढ़ गया कि हनुमान जी को सहन नहीं हुआ। हनुमान जी फिर प्रकट हो गए, बोले आपका रुदन हमको सहन नहीं हो रहा, आप धैर्य धारण करो, बस रात भर की प्रतीक्षा कर लो, कल माघ कृष्ण अमावस्या है, मौनी अमावस्या, कल आपको प्रभु का पुनः दर्शन होगा, प्रातः काल के समय होगा, समय भी आपको बता देते हैं, एकदम अब तैयार रहना। गोस्वामी जी ने मौनी अमावस्या को स्नान किया। यह बात संबत 1607 की है, संबत 1607 की जो माघ अमावस्या मौनी अमावस्या जिसको कहते हैं, उस दिन बुधवार दिन था और प्रातः काल का समय था। गोस्वामी जी रामघाट पर विराजमान थे और स्नान करके चंदन घिस रहे थे, अपने शालिग्राम जी की सेवा के लिए मलयागिरी चंदन उतार रहे थे। उसी समय श्री रघुनाथ जी 16 वर्ष के किशोर अवस्था के बालक के रूप में प्रकट होकर के बोले, बाबा मुझे भी चंदन लगा दो ना, आप तो चंदन घिस रहे थे, सीताराम सीताराम जप रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कब हनुमान जी कह के गए प्रभु कब आवे कब आवे। जैसे ही वह मृतक जियावनी वाणी कर्ण कुहर के माध्यम से अंतःकरण में गई, महाराज मृतक जियावनी गिरा सुहाई श्रवण रंध्र हुई उर्जव आई, व्याकुल हो गए, अरे देखें तो एक अत्यंत सुंदर बालक घुंघराली अलकावली है, पीत वस्त्र हैं, ठगे से रह गए और ऐसी टकटकी लगाकर देखने लगे कि ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, इसकी सुध ही नहीं रही। हनुमान जी ने विचार किया, अब दर्शन तो कर रहे हैं खूब आंख भर के, अब फिर जब ये चले जाएंगे तो फिर कहेंगे हम तो बालक समझा, फिर समस्या आ जाएगी, पहले कहते थे शिकारी समझा, अब कहेंगे हमने तो एक सुंदर बालक समझा, हम तो पहचान ही नहीं पाए कि ये मेरे प्रभु हैं। तो तुलसीदास जी कहीं फिर अवसर न चूक जाएं, अब की बार श्री हनुमान जी महाराज एक तोता के रूप में राम घाट पर लगे हुए एक अर्जुन वृक्ष की डाली पर बैठ करके हनुमान जी शुक रूप में तोता के रूप में हनुमान जी ने एक दोहा पढ़ा। मूल गुसाई चरित में बाबा श्री माधव दास जी ने उस दोहा को लिखा है और ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। प्रायः भारतवर्ष में कहीं भी चले जाओ ये दोहा सब लोग जानते हैं, चित्रकूट के घाट पे,
चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर।
और हनुमान जी ने तोता का रूप धारण किया और सीताराम सीताराम बोले, तो आज भी लोग तोता को चित्रकूटी चित्रकूटी कहते ना, तोता को चित्रकूटी राम राम, चित्रकूटी दूध रोटी ये भी बोलते हैं, चित्रकूटी दूध रोटी। देखो संतों से जुड़े हुए प्रसंग कितने प्रेरणादायी हो जाते हैं और कितने व्यापक हो जाते हैं, ये देखने की बात है। श्री मलुकदास जी का ये दोहा, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम। जहां तक विश्व में हिंदू समाज है ये दोहा सबको याद है, और कुछ पता होए न होए सबके दाता राम सबको पता है। और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अब जैसे ही सुना चित्रकूट के घाट पे, हमारे महाराज जी ने चित्रकूट चर्चिका में इस दोहे का बड़ा सुंदर अनुवाद किया है।
जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हमारे महाराज जी ने अनुवाद किया है चित्रकूट चर्चिका नामक संस्कृत ग्रंथ में।
घट्टे श्री चित्रकूटस्य, घट्टे श्री चित्रकूटस्य साधु संघटको भवत्।
घट्टे श्री चित्रकूटस्य साधु संघटको भवत्, करोति तिलकम रामः तुलसी राति चंदनम हरिशरणम। अब तो गोस्वामी जी पहचान गए। नेत्रों से प्रेमा सुधार बह चली, मूर्तिवत स्तब्ध होकर के रह गए। और ठाकुर जी आंख भर के गोस्वामी जी को देख रहे हैं और गोस्वामी जी ठाकुर जी को देख रहे हैं।